शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, आयत नंबर 217 है। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। यहाँ सहाबा का ये सवाल नहीं है, मुश्रिकीन मक्का का। कैसे? एक खास वाक्या पेश हुआ था उसकी रोशनी में। क्या है? मुश्रिकीन मक्का ने सवाल किया नबी सल्लम से, क्या अनिशहरिल हरामी कितालिफी, ये बताइए माह हराम में लड़ना कैसा है? यानी सहाबे कराम के बारे में मुश्रिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछा, ये बताइए कि हुरमत के महीने में लड़ना क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इस बात से बालाए नज़र कि मेरे सहाबा से गलती से कुछ हुआ है या उनका कोई मामला था, आपने बिल्कुल सही हुक्म दिया, कुल कितालुन फीही कबीर, हाँ बहुत बुरी बात है, आम तौर पे भी कत्ल बुरा है, लेकिन हुरमत के महीने में ये करना ये तो बहुत बुरा है। लेकिन तुम जरा एक बात तो बताओ, आज तो बड़े भोले बन के दीन के नाम पे पूछने आ गए हो कि हुरमत के महीने में कोई कत्ल कर दिया जाए तो वो कोई अच्छी बात है कि बुरी? तुम जरा थोड़ा सा अपने दामन में भी झांको और जरा अपने करतूत भी देखो, तुम क्या कुछ कर चुके। तो इसलिए अब उनके शऊर को बेदार करने के लिए कहा जा रहा है, वसद्दुनन सबीलिल्लाही, नंबर एक ये तो बताओ कि अल्लाह के रास्ते से रोकना, और वकुफ्रुम भी ही, और उसका इनकार करना दूसरा जुर्म, तीसरा जुर्म वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना। अगर आप इस आयत पे नजरें जमाएं अपनी, मैं इस वक्त जब बोलती हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल अरबी आयत होती है और मैं उसके अंदर से बिल्कुल अपने आप को इधर उधर नहीं होने देती। सद्दुन अन सबीलिल्लाह के बाद वल मस्जिदिल हराम आना था मजमून के एतबार से, बीच में वकुफ्रुम भी एक अलग बात छेड़ दी गई, क्योंकि अल्लाह के रास्ते से रोकना और अल्लाह का कुफर करना दोनों एक साथ आ रहा था। असल मजमून क्या था कि वसद्दुन अन सबीलिल्लाही वल मस्जिदिल हराम, क्या मतलब? और अल्लाह के रास्ते और मस्जिद हराम से रोकना। अब इतनी बात किसको समझ आएगी? ये ऐसी है कि जैसे बात करते वक्त दो बातों को जोड़ा जा रहा है, यहाँ सबीलिल्लाह से रोकना है और मस्जिद हराम से रोकना है, ठीक है, और कुफ्रुम बिही का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से था तो लिहाजा उसको ऊपर कर दिया गया। बात बिल्कुल वही है कि ये बताओ कि मगर अल्लाह की राह से रोकना और इससे कुफर करना और मस्जिद हराम में जाने ना देना और इससे भी बढ़ के वह इखराज अहलिही मिन्हु, और उसमें रहने वालों को वहां से निकालना, मिन्हु इसमें से, यानी हु से मुराद जहां मक्का है, अकबर इंदल्लाह, ये तो अल्लाह की नजदीक इससे भी बड़ा। बात समझ आई है? हुआ क्या था, एक खास वाकया पेश आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब से, जमादियुसानी 2 हिजरी, हिजरत का दूसरा साल था, जमादियुसानी था। हुआ क्या कि अल्लाह के नबी सल्लम ने मालूमात हासिल करने की गरज से एक दस्ता, एक ट्रूप सहाबा का वादी नखला की तरफ भेजा। नखला किधर है? मक्का और ताइफ के बीच में। कलम आपके हाथ में होना चाहिए, टेबल पे नहीं, आप टेक छोड़ दे, शाबाश। वादी नखला की तरफ भेजा, तिजारती काफला था। सहाबा कराम जाहिर है कि जब उनके सामने आए तो आपस में बात हुई, गलती से एक शख्स कत्ल हो गया सहाबा के नहात से, बाकी लोगों को गिरफ्तार करके सहाबा नबी सल्लम के पास ले आए। यहाँ देखिए कि डिसिप्लिन कितना था कि मैदान जंग में भी अगर कोई काम किया तो फौरन नबी सल्लम के पास आके उस पूरी बात को रख देते थे। हुआ क्या कि सहाबा कराम समझे कि आज जमादियुसानी की 30 तारीख है, ठीक है, लेकिन असल में क्या हो गया, उसके अगला कौन सा महीना है? रजब। और रजब है कौन सा महीना? हुरमत वाला। सहाबा समझे कि अभी 30 जमादियुसानी है, लेकिन हकीकत में यकम रजब हो चुकी थी। सहाबा को ये पता नहीं था। अब वो एक जनरल, जो एक रेगुलर रूटीन के मामला थे उस पे जा रहे थे, लिहाजा ये कत्ल जब हुआ तो मुश्रिकीन मक्का ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। जब अल्लाह के नबी के पास एक रूप आया, अल्लाह के नबी ने इनको बिल्कुल वेलकम नहीं किया, आपने खुद भी उनकी इस बात को नापसंद किया, सहाबा को इस पर डांटा भी कि आपने जल्दी की तहकीक कर लेनी थी, जो भी हुआ गलत है। मैं आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के एक गिरोह से एक गैर जिम्मेदाराना फेल हो गया, और हो सकता है अभी मुहर्रम के नाते आप बहुत कुछ सुनेंगे लोगों से कि फलां साहबी ने ये किया, कैसे लोग लान तान करते हैं ना बड़े बड़े सहाबा पे। तो एक बात समझ ले, सहाबा के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने कह दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन, अल्लाह उनसे राजी वो उनसे राजी, दैट्स इट। सहाबा के बारे में गलत बात का सोचना भी हमारे ईमान को खराब कर देगा। बाकी रह गई बात कि हमारा ये भी ईमान है कि वो बशर्त है, इसलिए इनफिरादी तौर पे सहाबा से कहीं कोई गलती हुई कहीं कोई हुई, ये इस तरह समझे। मैं आपको मिसाल देना चाहती हूँ कि बात आसान हो। आज सहाबा तो नहीं है लेकिन अल्लाह का दीन तो मौजूद है। दीन के नाम पे काम करने वाले लोग दुनिया में आपको मुख्तलिफ तरह के मिलेंगे। इज्तमाही तौर पे ये बहुत बड़ा काम है, कोई तबलीग करे, कोई दावत दे, कोई अल्लाह का दीन सीखे सिखाए, एक्सीलेंट। हमारा काम क्या है कि जो बंदा आज के दौर में दीन के साथ अपनी निस्बत जोड़ लेता है ना, बस समझे वो हमसे अच्छा है, सीधी सी बात है। इनफिरादी तौर पे मेरे से कोई गलती हो सकती है, दूसरे से कोई हो सकती है, तीसरे से हो सकती है, लेट देम डू, गो हेड, जाने दें, इग्नोर इट। अच्छा मेरा हाल क्या है कि कोई दीन का काम ना करे तो सब मुतमईन, जरा कोई दीन का काम करने लग जाए तो फिर लोग उसके अंदर यूं उसके एक एक हरकत को नोट करते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला का मामला अपने बंदों के साथ बड़ी नरमी का है। सहाबा से गलती हुई, आपने मजम्मत भी की, लेकिन मुशरिकीन ने तूफान खड़ा कर दिया कि बड़े अल्लाह वाले बनते हैं जी, देखो हुरमत वाले महीनों में भी खून खराबे शुरू कर दिए, इससे बाज नहीं आते, जो बातें होती हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा बात तो तुमने सच कही है, इस वक्त तो वाकई मुसलमानों से गलती हुई, लेकिन ये जो तुम 5 काम कर चुके हो उनका कौन बताएगा? क्या आपको ये सोच आज भी नहीं मिलती? पूरी दुनिया में इंसानियत का कत्ल, कहीं जंगों के नाम पे, कहीं फसलों को तबाह करके, कहीं बेकार चीजों को आम करके, कहीं हथियारात की नुमाइश, कहीं रेडिएशन, कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पूरी दुनिया में पोल्यूशन फैलाने में कोई आगे आगे, कोई हर्ज नहीं। और इधर मुसलमानों से जरा सी 19 से 20 को बात कोई जुमला कोई बोल दे तो उसको पकड़ के पूरे मीडिया में उछालते हैं। तो याद रखिए ये कुफर के दिल में जो इस्लाम के बारे में बगज है उसकी तरफ इशारा है। तो अल्लाह सुबहान तआला के यहाँ बात समझाने का अंदाज कितना खूबसूरत है कि ठीक है मानते हैं, हाँ हम मान लेते हैं ये बात है, लेकिन तुम जरा अपनी तरफ भी देखो। इसको कहते हैं कि जब दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने यहाँ कुफार के काम जो है सद्दुनन सबीलिल्लाह कुफरुम बिही वल मस्जिदिल हराम इखराज मिनहु, 4 काम अल्लाह ताला ने रखे और इसके अंदर ही बता दिया कि वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। देखो कत्ल में तो कोई एक बंदा मरता है, अब एक मरा ना वो शख्स जो था वो अब्दुल्ला बिन जहश की सरकर्दगी में काफिला था जिसके हाथों मारा गया था, और मुशरिक का नाम अमर बिन अब्दुल्ला अल खिजरमी था। लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ मान लिया अमर बिन अब्दुल्ला मारा गया, ठीक है बहुत बड़ी बात है, एक शख्स का कत्ल था, लेकिन अब ये जो तुम शोशे छोड़ रहे हो और जो तुमने प्रोसिक्यूशन शुरू की हुई है इस्लाम के बारे में जो बातें करते हो, तो ये बताओ कि ये कैसा है? ये अच्छी बात है, तुमने तो मुसलमानों को इतना तक मजबूर कर दिया मक्का में से कि निकलने पे मजबूर कर दिया, हालात ही ऐसे बना दिए। तो अब बताओ अगर आज ये बेचारे अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में बैठे हैं, कोई इनसे खता हो भी गई तो फिर क्या हुआ? यहाँ ये भी नोट कीजिएगा कि हिजरत के बाद ये पहला खून था जो मुसलमानों के हाथों से हुआ। 13 साल मुसलमान पिटते रहे, मारे खाते रहे, तकलीफें सहते रहे, कोई नहीं बोला कुछ, और आज 13 साल के बाद 2 साल और डाल लीजिए उस 15 साल के बाद पहला कत्ल मुसलमानों के हाथों से कुफार का हुआ, कितना शोर मचाते हैं। आज नहीं, आपका कोई एम्बेसडर जरा इधर से उधर हो जाए आप पूरी दुनिया की एम्बेसीज को हिला दें, और इस तरह के हालात हैं। तो अल्लाह ताला ने उस पर ये बात करके बता दिया वल फितना तो अकबरु मिनल कत्ल, फितना बहुत बड़ा है कत्ल से। इसको भी जरा समझ लीजिए, ये वही आयत है जो पीछे आयत 191 में भी आ चुकी है कि वल फितना तो शद्दु मिनल कत्ल। ठीक है, सवाल पैदा होता है फितना क्या होता है? तो समझें फितना हर वो कैफियत जिसमें साहिबे ईमान का अपने ईमान को बचाना मुश्किल हो जाए और इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाए। लिखे जरा ये डेफिनेशन और फिर उसके बाद अखबार की खबरें और न्यूज़ चैनल की बातें सुने। हर वो हालत जिसमें बंदे को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो और अपने इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो। बताइए क्या आज फितने हैं? एक गज टुकड़ा सर पे औरतें रख नहीं सकती, इतना फितना। कोई इस्लामिक हाल हुलिया अपना नहीं सकता, चले वो तो कम कहते होंगे, हम खुद ही पीछे हट जाएं। तो हर वो चीज जिसमें मुसलमान अपने दीन पर अमल ना कर सके वो फितना है। आज आप देखिए हर तरफ गलत कामों के रास्ते खुले हुए, गलत कारोबार मौजूद हैं, हलाल खाना मुश्किल बना दिया गया। कोई अगर निकाह शादी को अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों के मुताबिक करना चाहे तो कोई नहीं करने दिया जाता। कहीं रस्म और रिवाज के नाम पे बातें, कहीं जिना के रास्ते। जिस मुआशरे में बातिल का इतना गलबा हो, हक पर चलना मुमकिन न रहे, तो बताइए कि इससे बड़ा फितना और क्या होगा। आज इनफरादी तौर पे हमारे अपने मुल्कों में फितना है। हम अपने मुसलमान मुल्कों में रहते हुए अपना दीन नहीं सीख सिखा सकते, काम नहीं कर सकते। आज माएँ बच्चों को मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं भेज सकती फजर में कभी, कि नहीं जी पता नहीं वहाँ गोलियां ना चल जाएं। तो याद रखिए कि शुरू से लेके इस्लाम के खिलाफ यही हथकंडे बातिल ने इस्तेमाल किए कि मुसलमान अपने दीन के मामले में शर्मसार हो जाए। इसीलिए कहा कि फितना गलत है। क्यों भला? कत्ल में तो एक बंदा मारा गया ना, और जब फितने फैलते हैं तो कितनों का ईमान जाता है। खुद माएं अपने बच्चों को पीछे करती हैं। मैं किसी इंग्लिश स्पीकर की स्पीच सुन रही थी, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा था, बस यूनिवर्सिटी जाता था, अल्लाह ने उसको दीन दे दिया, इस्लाम की मोहब्बत थी, किसी ग्रुप को ज्वाइन किया। अब क्या करता था वो बच्चा? कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपको तो सारा सारा दिन वहां सफर रहना आता। उसके करीब ही कोई मस्जिद थी, तो वो क्या करता कि बीच में जो मगरिब असर जो भी जोहर की नमाज आती है वो मस्जिद में जाता, और जो उनका स्टडी पीरियड था जो स्कूल या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं तो वो मस्जिद में जाके पढ़ता। समझ रहे? नमाज के लिए जाता, फिर वहीं बीच में स्टडी कर लेता, फिर दूसरी नमाज पढ़ के आता। तो जब उसके अपने माँ बाप को पता चला तो उन्होंने कहा, बेटा इट्स टू मच, तुम बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हो कि तुम अब मस्जिद में पढ़ना शुरू हो गए। आज हमारे मर्द नहीं जाते ना मस्जिदों में, इसीलिए हम खुश हैं और हम रोते भी हैं, कभी दुख भी करते हैं, हाय ये जाया करें। मैं यकीन से कह सकती हूँ जिस औरत का मर्द 5 वक्त मस्जिद में जाएगा वो औरत कई दफा दिन में अपनी सोचेगी इस वक्त फिर मस्जिद। आप उनको शॉपिंग पे लेके जाना चाहती हैं वो कहते हैं मस्जिद। आप कहती हैं खाना तैयार है खाना खाएं, वो कहेंगे मस्जिद। आप उनको कहेंगे कि चलिए जी चलते हैं कहीं दूर, वो कहेंगे नहीं नमाज का वक्त होने वाला। भी कहाँ नमाज का वक्त होने वाला है? नहीं वहां जाके वापस नहीं आ सकते इसलिए मैं नहीं जाता। याद रखिए मुत्तकियों के साथ रहना इतना आसान नहीं होता, ये तो आज हमने चखा ही नहीं है ना। लेकिन हर वो बंदा जो आज पूरे इस्लाम पे अमल करना चाहता है उसके अपने घर वाले उसके परेशान हो जाते हैं। और यहाँ देखिए कि अल्लाह ने अहले ईमान को मस्जिद हराम का अहल कहा है। ये खूबसूरत बात है कि असल में अहले ईमान ही है वो ग्रुप के जो हकीकत में मस्जिद हराम के अहल हैं। आज इसीलिए अल्लाह ताला ने इग्नॉन मुस्लिमों को वहां जाने की इजाजत ही नहीं दी, तो कहा कि इस कत्ल से बचो। मुझे किसी ने किसी मुसलमान मुल्क की बात है गालिबन या किसकी है, किसी जगह मेरा दर्स था, कोई भी थी साथी, तो बिल्कुल सिंपल जैसे होता है, कोई उसमें लच्छेदार बातें नहीं थी, सिंपल तरीके से जो बातें थी वो बता दी। कुछ बातें एंड पे सवाल जवाब पूछे, मैंने उन्हें कहा कि देखे सीधी बात पूछेंगे तो जवाब यही है, और अगर आप इसको घुमाना फिराना चाहें तो जैसे मर्जी कर लें। तो बाद में जब हम बैठे तो एक साथी थी जो माशाल्लाह खुद भी दरसो तदरीस से वाबस्ता थी, तो बड़ी लंबी आह भरी उन्होंने। कहने लगी कि आज मुझे बहुत दिन के बाद किसी ऐसे बंदे के दर्स में आने का इत्तफाक हुआ कि जिसने वही बात कही जो हम कुरान सुन्नत में खुद पढ़ते हैं, वरना अब तो हाल क्या हो गया कि दीन वाले भी जब दीन की कोई बातें करें तो छुपाते हैं, छुपाने से मेरा गोलमोल जवाब दे देते हैं। तो कहती कैसे ही कुछ था, तो मैंने उनसे जब कहा कि भाई आपको नहीं पता कि असल मसला क्या है तो आपने ये जवाब क्यों दिया उनको, तो कहने लगी उन्होंने आगे से मुझे यही कहा, हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं बात नरम बता रही हूँ, लेकिन देखो वल फितना तो अकबर में नल कतल। आज के दौर में फितने से बचने का ये हल है कि इस्लाम पे अमल ना करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए हम मुसलमान समझते ही नहीं है किस वजह से हमें मार पड़ रही है, यही नहीं समझा आज तक। ये तो हाल वही है कि बाप गुस्से वाला हो, बच्चा गलत काम करे, तो माँ को क्या उसको नसीहत करनी चाहिए कि गलत काम ना करो, सिंपल सी बात है। और बच्चा बाप कोई बात पूछे बच्चे ने की है कि नहीं, तो माँ से ही सिखता दे, और माँ सिर्फ इस वजह से कि बच्चे को मार पड़ेगी बाप के आगे उसकी बात छुपा दे तो गलत होगा। बाप से तो कोई छुपा लेगा, अल्लाह से कौन छुपेगा? तो हम सब मुसलमानों के लिए आयात आज के दौर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज हमने बहुत जगह खुद अल्लाह की मदद रोकी हुई है क्योंकि हम दूसरों की मदद बुला लेते हैं। हमें अल्लाह से ज्यादा दूसरों पे ट्रस्ट है। हम सोचते हैं कि हमारे बनाने और बिगाड़ने वाले वो हैं। एक वाक्या तारीख ऐसे दिन में आ गया कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का दौर था और कहत साली थी, बारिशें नहीं हो रही। बहुत कोशिश की, देखा कि कहीं ना कहीं से कोई इंतजाम हो जाए, नहीं हो सका। तो फिर दिल में ख्याल आया कि लोग फाको मर जाएंगे, तो क्यों ना नॉन मुस्लिम हुक्मरान जो पड़ोस में उनसे मदद मांग ली जाए। उमर ने खत लिखा और उस नॉन मुस्लिम बादशाह को कहा कि इस तरह हम पे हालात खराब है, तो कुछ मदद दे दो। नॉन मुस्लिम तो हमेशा ये चाहते हैं कि ये अल्लाह से ना मांगे, हमसे मांगे, वो तो खुशी खुशी देंगे। इतना बड़ा काफला उसने भेजा, कहते हैं कि उसका एक ऊंट मदीना में था और उस काफले का आखिरी ऊंट उसके मुल्क में था। इतना लंबा फूड का उसने कहे के भेजा। क्या हुआ, 2-3 दिन में खाना फिर खत्म। आप जरा पूरे शहर को आप एक ऊंटों के कंटेनर से भी कितना को खिला लेंगे, फिर खत्म। खैर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का दौर ही था, तो एक सहाबी थे, बद्री थे या गालिबन कौन थे मुझे अभी इस वक्त याद नहीं, उनको ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये उमर को क्या हो गया। बस इतनी बात की, यानी थोड़ी सी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने ख्वाब जाके हजरत उमर को सुना दिया कि आज अल्लाह के नबी ख्वाब में मिले और थोड़े गुस्से में थे। बस अब उमर तो परेशान, देखिए उनको इसकी फिक्र नहीं रहती थी कि हमारी सदारत वजारत इमारत रहती है कि नहीं और बड़ी ताकतें हमें एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती। उनको गम ये पड़ता था कि कोई गलती हो गई तो चले खिलाफत तो पीछे करें, हमारा तो ईमान जाएगा। मजलिस शुरा बुला ली, बड़े बड़े उलमाए कराम का, देखो ये सारे हालात समझो मेरे और बताओ कि मैंने गलती क्या की है। और आपको बताया कि उस मजलिस शुरा का फैसला क्या था कि उमर या अमीरुल मोमिनीन, आपसे गलती ये हुई कि बारिश की कमी थी, अनाज नहीं था, आपने एक नॉन मुस्लिम बादशाह से तो मदद तलब कर ली लेकिन सलातुल इस्तिस्का नहीं पड़ी, अल्लाह से नहीं मांगा। का यही बात है, चलो सारे लोगों से कहो के निकलो बाहर। खुले मैदानों में लोग जाके फिर कपड़े उठा उठा के दुआएं मांगते हैं, वहां जाके सलातुल इस्तिस्का पड़ी। इतनी जलथल हुई मदीना की गलियों में पानी खड़ा हो गया, सब कह दूर हो गया। तो याद रखिये, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। आज एक अल्लाह के नाम के ऊपर हम एक नहीं होते, हमें दूसरों को खुश करना है और हम कहते हैं कि दीन पे अमल किया तो फितना। आज दाढ़ी रखने को लोग फितना नहीं समझते क्या? हिजाब नकाब स्काफ फितना है आज के दौर में। लोग कहते हैं हाय हमारी बचिया भी, अब तो इसने स्काफ भी लेना शुरू कर दिया, अब तो पता नहीं इसके साथ क्या मामला होने वाला है। तो दुआ कीजिए कि बेअमली को इंसान बदले, ना कि जो थोड़ा बहुत अमल करता है उसको पलट जाए। और अल्लाह ताला मुसलमानों की फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, आप फिक्र ना करें, ये नहीं रुकेंगे आपसे लड़ने में, ये लड़ते ही रहेंगे। अब आपने गलती से कत्ल किया है या आप जान के भी करेंगे, ये तो आपसे लड़ते रहेंगे। हत्ता यरुद्दू को मंदीन को, हाँ इनकी लड़ाई आपसे रुकने की बस एक ही सूरत है कि तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। इन इस्तताउ, अगर वो कर सकें, इशारा क्या कि नहीं कर सकेंगे। देखिए ये है वो असूल जिसको आज लोगों ने लिबरलिज्म के नाम पे अपनाया हुआ है। बी लिबरल, बी मॉडरेट, दीन भी रखो दुनिया भी रखो। आज भी आप देखिए कि उन मुसलमानों से कुफार बहुत खुश है जो अपना इस्लाम जाहिर नहीं करते, जो कुफार को बुरा भला नहीं कहते, उनकी शराब कबाब की महफिलों में शामिल। आप रिश्तेदारों पे ले लें, काफिरों को तो छोड़ दें। ये बीच बचाव का रास्ता लोगों ने कब लिया हुआ, क्यों लिए, सबको खुश रखो। मैं कहती हूँ आप 10 लोग बैठे हो ना और नमाज का वक्त हो जाए तो एक मर्द उठ के बीच में चल पड़े ना कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा हूँ। इतनी भी जरूरत नहीं आज मुसलमानों में, काफिरों की तो बात बड़ी दूर की बात है। तो देखें घर में मेहमान थे तो ये छोड़ के चले गए, बेगम को भी गुस्सा आएगा क्या हो गया आपको, मेहमान थे घर में पढ़ लेते, भाई अब सब मिले हुए थे जमात कर लेते, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत थी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज हम अपने घरों में नहीं बर्दाश्त कर सकते, काफिर दूसरे लोग तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो ये जो बात है कि तुम दीन छोड़ो फिर हमें तुमसे कोई हर्ज, काफिरों की दुश्मनी मुसलमानों से नहीं है, इस्लाम से है। वो मुसलमान को नहीं मारना चाहते, इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम ना रहे मुसलमानों में और क्या वो अपने इस टारगेट में कामयाब है, ये अब हम खुद देख सकते हैं, अपने हालात को देख सकते हैं। मक्का के मुशरिक मुसलमानों की दुश्मनी में तो बड़े हुए थे, इस बात पर बजिद थे कि हर मुमकिन ताकत और तदबीर इस्तेमाल करें और मुसलमानों को उनके दीन से फेर दें, नए लोगों को इस्लाम की तरफ आने से रोकें और जिनमें इस्लाम है उनको इस्लाम पे अमल से रोकें। और इसका हथियार क्या था? बाप दादा के नाम पे जो गलत काम कर रहे थे उसको करते रहे। अल्लाह ताला कहते हैं जाओ खुश करते हैं उनको, वमै यरतदिद मिनकुम अन दीनिही, और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा, मतलब कौन सा फिरना है, जुबान से कह देगा आई एम काफिर नो आई एम लीविंग इस्लाम, अमल से इर्तदाद बिल अमल, फयमुत और वो मर जाए, वहुवा काफिरुन और वो कुफर की हालत में था, फौलाइका हबितत आमालुहुम, तो ऐसे लोगों के आमाल जाया हो जाएंगे, फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया और आखिरत दोनों में, फौलाइका असहाबुन नार और वो लोग आग में रहने वाले हैं, कब तक, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत में एक बहुत बड़ी धमकी है और वो धमकी क्या है कि जब मुसलमान अपने अंदर कुफर रखें, यहाँ कुफर के दर्जे नोट कर लीजिएगा, कुफर के कई दर्जे हैं ना, एक तो आखिरी दर्जा ये ना कि इस्लाम ही छोड़ देना, उसको तो हकीकी मुर्तद कहेंगे, यानी कोई इस्लाम कबूल करे और फिर छोड़ दे, ये भी होता है किसी डर की वजह से कुफार की तरफ से या उनके किसी लालच की वजह से, ठीक है, उसके लिए तो आप कह लें कि इसको टर्मिनोलॉजी में मुर्तद कहते हैं, इंशाल्लाह हम सूरत मायदा में पढ़ेंगे वमन यरतदिद मिनकुम अन दीनी, उसमें इसकी मजीद तफसील आता है। यहां समझ लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स ऐसा करता है क्या होगा उसके दुनिया में चीजें, नंबर एक मुसलमान होने की वजह से जो उसकी जान माल महफूज था मुसलमानों के हाथों, वो महफूज नहीं रहेगा, भाई जाहिर है कि एक मुसलमान मुल्क में एक मुसलमान रहता है उसके और हकूक है, काफिर है जिम्मी बन के रहता है जिजिया देता है और होगा, ठीक है, दूसरी बात है उसका अपनी मुसलमान बीवी से निकाह कायम नहीं रहेगा, मुशरिक मर्द के अहद में काफिर बीवी नहीं रह सकती, तीसरा उसका दुनिया का नुकसान क्या है कि मुसलमानों की वरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, यानी ऐसा दीन छोड़ने वाला बेटा अपने बाप की जायदाद से महरूम, बेटा है तो बेटी सब जो भी जिस रिश्ते से उसको मिल जाता है उससे हिस्सा नहीं होगा, फिर मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं किया जाएगा, ये अगला नुकसान है, ठीक है, और हद ये है कि अगर उस वक्त दुनिया में इस्लामी हुकूमत होती या हो तो ऐसे बदहद बागी और मुर्तद को जिंदा रहने का हक नहीं मिलेगा, यानी इस्लाम छोड़ने वाले को फिर दुनिया में नहीं रखा जाएगा बजा। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, आप देखिए कि एक शख्स जो इस्लाम में आया ही नहीं अभी, वो बाहर जाके इस्लाम को जितनी भी बातें करेगा ना तो लोग क्या कहेंगे, छोड़ो दुश्मन है ना इसलिए करता है, हसद करता है ना इसलिए, और सो ऑन, गैरों की बात हमारे हक में कौन सुनता है, लेकिन जब आपका अपना कोई बंदा उठ के जाता है और वो आपके खिलाफ बातें करे तो लोग क्या कहते हैं, इसको तो घर वाले भी ऐसे कह रहे हैं, दूर वाला क्यों ना कहेगा, ठीक है, तो जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, यही हालात है जब एक इस्लाम में आता है दूसरों की नजरें उस पर लग जाती हैं, जब वो इस्लाम से निकलेगा तो लोगों को ये तो नहीं कहेगा इस्लाम बहुत अच्छा है, वेरी नाइस मुस्लिम और वेरी गुड बट आई एम लीविंग इस्लाम, वो अपने जाने की कुछ दलीलें देगा ना, तो ये एक ऐसा ही शख्स है जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी जरासीम को अपने अंदर लेने वाला मरीज, जब वो वहां से निकलेगा तो वो जरासीम बाहर फैलाएगा, तो कहा फिर इसको खत्म कर दो, ठीक है, और आखिरत में उसका नुकसान क्या है ये भी गौर से सुन लीजिए, हबीतत फिल आखिरा में क्या होगा कि ऐसे शख्स को आखिरत में किस तरह नुकसान होगा कि जो उसने कुछ अमल इस्लाम की सूरत में किए थे मुसलमान होने के बाद वो सब जाया। यहाँ अल्लाह ताला का बड़ा बेलाग असूल समझिएगा, और वो क्या है कि जिस तरह कुफर से इस्लाम पे आने से बंदे के पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं, बात वैसे पीछे हुई थी, कुफर से इस्लाम पे जब आएंगे तो सब गुनाह माफ। इसी तरह जब इस्लाम लाके कोई कुफर पे जाएगा, ना सिर्फ ये कि उसके वो नेकियां या जो उसने गुना किए हैं इस्लाम की दौर में वो जाया होंगे, बल्कि वो पिछले कुफर के गुना वापस पलट आएंगे। कितनों को असूल समझ आ गया, दोहरा देती हूँ। कुफर से इस्लाम पे आए, मिसाल है 40 साल की उम्र में, 40 साल के पिछले गुना माफ, नमाजें माफ, रोजे माफ, सब कुछ माफ। अल्लाह ने बच्चे की तरह नया आपका नामे अमल बना दिया, क्लीन क्लियर हो गया, खत्म। अल्लाह ना करे कोई आके पलटे, पलटेगा तो क्या होगा। मिसाल है कि 42 साल की उम्र, 2 साल के बाद उसको लगता है इस्लाम में तो कोई खैर ही नहीं है, मैं तो बातों में आ गया, मैं जज्बाती हो गया। 2 साल में उसने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किया, ज़कातें दी, जो भी दिया फायदा हुआ ना। खुदा ना खास्ता 2 साल के बाद पलट गया तो क्या होगा। इस 2 साल की नेकियां भी जाया, और वो पिछले 40 ईयर्स में चले 10 बचपन के निकाल दें तो 30 साल के गुनाह भी वापस। ये है हबीतत, अल्लाह हो और अल्लाह मला तचलना मिन हो हबीतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया और आखिरत में अमल जाया, खसीरत दुनिया वल आखिरा, जिसको आप कहें कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और आप देखिए कि ये तो है ना इर्तदाद का आखिरी दर्जा। अब यहाँ एक सवाल है आपके सामने, जहनों में उठता है, क्या करें। यहाँ तो हमने ये पढ़ा कि निकाह तक टूट जाता है। आज के दौर में कोई ऐसा है, या कल का दौर था, या नबी सल्लम का दौर था, तो पहली बात यह है कि मुझे और आपको इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात है, इस्लाम बंदे के साथ उसके हालात के मुताबिक डील करता है। एक होता है आइडियल सोसाइटी, जहाँ पूरा इस्लाम, इस्लामिक लॉज, सब कुछ मौजूद है, जो नबी सल्लम के दौर में बना और उमर फारूक में अरूज को पहुंचा, ये तो कहानी है। उसमें तो 110% इस्लाम के रूल्स वैसे ही लागू होंगे जैसे बताए जा रहे हैं। दूसरा एक दौर होता है जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे रेवोल्यूशनरी दौर, इनकलाबी दौर, अपसाइड डाउन है, चेंजेस आ रही हैं। उसमें क्या हुआ था, इसकी बेहतरीन अमली मिसाल नबी सल्लम की बेटी की जिंदगी में मिलती है। क्या आपकी एक बेटी कुफर से इस्लाम पे आ गई थी, अभी इस्लाम बन रहा था, नया नया इस्लाम था, दोनों ही कुफर पे थे पहले। जाहिर है कि जब था ही उससे पहले इर्द गिर्द में कुफर, तो दोनों कुफर पे थे। अल्लाह ने बेटी को इस्लाम दे दिया आपकी, अब वो मुसलमान हो गई। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, घर घर ये मामला था। अब क्या किया गया, खामोशी थी। वजह क्या है कि अभी वो हालात नहीं आए। फिर एक वक्त आया कि उस बेटी का मियाँ नबी सल्लम के पास कैदियों में आ गया, कैदी बन गया। अब क्या हुआ, आजादी का फिदिया चाहिए था, तो आपने कहा कि तुम मेरी बेटी को मेरे पास मदीना भेज दो। कोई तलाक नहीं हुई, सेपरेशन करा दी। बेटी आ गई मदीना में, कहा ठीक है मैं उसका रास्ता नहीं रोकूंगा, अगर वो जाना चाहती है आपके पास तो चली जाए, वो भी बात के पक्के रहे। उन्होंने अपनी बीवी को भेज दिया, बेटी बाप के घर आ गई। साल 2 साल का अरसा चलता रहा। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने जब उस बंदे को इसी की कोशिशों से इस्लाम दिया, क्योंकि जब रेवोल्यूशन आता है तो जिस चीज ने आपको बदला है वही दूसरे को बदलेगी। हम तो फतवे देने में बहुत तेज होते हैं लेकिन अगले की मदद नहीं करते, तो हुक्म क्या है कि जब तक फिर ऐसा मामला हो तो खत्तुल वसा अलग रहे, दूर रहे, जिस्मानी ताल्लुक ना हो, लेकिन नसीहत का हत्ता यस्मा कलामुल्ला। और जू ही आपके वो दामाद मुसलमान हुए, आपने उसी पहले निकाह पे दोनों को जोड़ दिया। आज इस्लाम की ये कितनी खूबसूरती है, इस्लाम कुफर के निकाहों की भी इज्जत करता है। पता है आपको ये बात, अहले किताब का आपस में निकाह हुआ है ना, आज अगर कोई क्रिश्चियन कपल मुसलमान होता है तो उनको दोबारा जाके वो निकाह पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे मुस्लिम माहौल में होता है। किसी का हिंदू धर्म में निकाह हुआ हुआ था, फेरे लेके आपके गिर्द, आज दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हो जाते हैं, नो न्यू वही निकाह दोनों की सूरत में। और जब आपका दामाद मुसलमान हुआ, आपने बेटी को उसके साथ भेज दिया। तो ये है रेवोल्यूशनरी दौर। अब ये कौन सा दौर है आज का, मेरा वो मालिक जानता है, ठीक है। ये तो है इन एक्सट्रीम की बात, कुफर का आखिरी काला से डार्क कलर का पर्दा जो दिल पे छाया हुआ था, नाम ही इस्लाम का नहीं था। आ जाइए जरा हम अपनों पर, बड़ी सख्त बात कहने लगी आप, बिल्कुल आपको शौर से सुननी पड़ेगी, आसान नहीं है ये बात। देखिए मैं हदीस से हट के बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अमल बहुत सारे हैं, लेकिन हदीस में क्या आता है, بین الکفری والاسلامی ترک الصلات. حدیث کے الفاظ کچھ مفہوم بدل سکتا ہے. مفہوم کیا ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر آپ اس رول کو لیں تو جس طرح ایک خود کو نان مسلم کہنے والا شخص نان مسلم ہے, ڈکلیئرڈ کافر ہے, کوئی بھی نام لیتا نا, کوئی کہتا ہے میں بدھا ہوں, کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں, کچھ بھی لے, ایک شخص مسلمان کہتا ہے خود کو اور نماز نہیں پڑھتا اور انکار کر دیتا ہے کہ نمازوں سے کیا ہوتا ہے, وہ بھی کافر ہے. اب وہ کافر ہے تو کیا اس کی بیوی پھر اس کے نکاح میں رہی؟ آپ اور میں کبھی فتوے نہ دیں, لکھ لیں اگر آپ نے میرے سے پڑھنا ہے نا, کسی پلیٹ فارم پہ بھی پڑھیں, اپنی زندگی کا اصول بنائیں صرف اور صرف سیلف انالیسس, اپنا محاسبہ. نظریں بھی نہیں آپ کی اٹھیں کسی طرف, بری بات ہوتی ہے, زبان بھی نہ آپ کی اٹھے کسی کی طرف, دل میں سوال بھی نہ آئے کسی کے بارے میں کہ اللہ تو جان تیرا معاملہ جانتا ہے. حالات وقت کے ساتھ سارے معاملے ہوتے ہیں. تو اسلام کے اصول ایک تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ایک عمل میں لکھے ہوتے ہیں, اور سارے گرے ڈارک لائٹ شیڈ سے گزر کے اسلام جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا کے قانون دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ ایک بے نمازی ہے, اب وہ بھی مشرک ہے, شراب پیتا ہے ایک شخص, زانی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جس نے زنا کیا اس کے دل سے ایمان نکل گیا. تو آپ بتائیں جن عورتوں کے مرد زنا کرتے ہیں ڈھکے چھپے, کیا ان کے اپنی بیویوں سے نکاح رہے ہیں؟ اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. واللہ ہی ہم صرف اپنے گھروں کو بچانے کے لیے بعض دفعہ حرام کے کئی کئی سال گزارتے ہیں اور تبلیغ بھی نہیں کرتے. تبلیغ کریں تو اور بات ہے, ان کو دھمکی دے دیں, ان کو کبھی پیار سے کبھی روٹ کے کبھی غصے سے منائیں, اور اللہ پہ یقین رکھیں گھر بچنا ہے تو بچے گا. پھر کہتے ہیں اب اس عمر میں جاؤں کدھر, بھائی تو رکھیں گے نہیں, ماں باپ تو ہے نہیں, اور ادھر سے جانا کدھر ہے. تو ہر بندے کے اوپر میں اور آپ مفتی نہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مفتی نہیں ہیں. ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ فلاں کے گھر کیا ہوا اور اس کے گھر کیا ہوا, فکر اپنی کریں. انسان کے اعمال میں کوئی فسق کا عمل ہے, کوئی کسی گناہ کو بالکل حرام چیز ہے اسلام کی, اس کو جائز سمجھتا ہے, فاسق ہے. کوئی کہتا ہے پک کا گوشت حلال ہے کھاؤ, کچھ نہیں ہوتا, ایسے ہی پہلے خراب ہوتا تھا اب صاف ہو گیا, فسق ہو گیا, وہ بھی کفر کا شیڈ ہے. کوئی کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, شراب پیو پلاؤ کچھ نہیں ہوتا, ٹو مچ ریجڈ ہو گئے ہو, یہ بھی کفر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جس درجے کا برا کام کرنے والا ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے. لہٰذا اگر اس حال میں کوئی مر گیا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کے کفر لیا, اولئک اصحاب النار, اندھیروں کا ساتھی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں آپ کو کہ دیکھیے, یہاں ایک بات آپ تو بھی نہیں سوچ سکتے اگر فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, لیکن جو علماء کرام ہیں دیندار محدثین مفسرین, انہوں نے بہت سوچا, کہتے ہیں یہ کیا بات ہے. ابھی ہم پڑھیں گے تیسرے پارے میں, ابھی کر لیں بات, وہاں بس ریفرنس لے لیجیے گا, وہاں پڑھیں گے لا اکراہ فی الدین. کسی کو زبردستی آپ دین میں نہیں داخل کر سکتے, یعنی اسلام دل سے اٹھتا ہے, گن پوائنٹ پہ کوئی مسلم نہیں ہو سکتا, وہ مسلم ہی نہیں ہوگا, وہ نفاق ہوگا. کون سا نفاق ہوگا؟ کفر نفاق. عبداللہ بن ابی کی کہانی موجود ہے. ایک شخص کو اسلام میں نہیں لا سکتے آپ, لا اکراہ فی الدین. کوئی باپ بیٹے کو, بیٹی ماں کو باپ نہیں کر سکتا, اس پہ تو نو کمپلشن, اپنی مرضی سے دل سے اٹھے گا, رب تمہارا ہے, قبر تمہاری, جنت تمہاری, جہنم تمہاری. لیکن دوسری طرف یہ بات کیوں کہہ دی کہ اسلام لے کے پلٹتے ہو تو پھر بڑی سختی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک صرف پریکٹیکل ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک شخص پہلے اندھیرے میں تھا, باہر کمرے میں اندھیرا تھا, آپ باہر گئے روشنی پہ, آپ کو روشنی اچھی لگتی ہے نا, ہمیں بھی کچھ سمجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ سن لائٹ بہت ساری ہو, روشنی پاکستان میں خاص طور پہ گرمیوں کی دوپہروں میں جب وہ بہت بڑی روشنی میں سے کمرے میں اندر آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کیا لگتا ہے؟ اندھیرا لگتا ہے. اسلام روشنی ہے, دل کی سچائی ہے. جب بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے نا تو وہ اندھیرے میں تھا, تو اب روشنی میں آیا تو چیزیں واضح ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ روز یسالونا کا کی باتیں ہو رہی ہیں, اسلام کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ کرو وہ کرو. آج ابھی آگے اور بھی آنی ہے باتیں, ٹھیک ہے. تو اندھیروں کی زندگی تھی, کفر کی تھی, من چاہی زندگی تھی, کھاؤ پیو موج مستی, اسلام میں آئے ویری گڈ. لیکن جب بندہ ایک دفعہ اسلام میں آ گیا تو گویا کہ وہ سورج کو دیکھ رہا ہے. اب اس کی روشنی کے بعد جب باہر پلٹے گا تو وہ ٹھوکریں کھائے گا نا, جس کو کہتے ہیں کہ ٹھڈے لگیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو ٹھوکروں سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا راستہ ون وے ہے, دیر از نو یو ٹرن, دیر از نو ٹو وے, کہ ادھر آ بھی جاؤ تو چلے بھی جاؤ. अल्लाह कहता है कि दुआएं कर लो अपने लिए कि मौत इस्लाम पे आए, ईमान पे आए, कोई ऐसा फितना ना मेरी जिंदगी में आ जाए कि जो मेरी जिंदगी से इस्लाम को निकाल दे। और अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के बारे में कह के सारी बात को हम सबको सिखा रहे हैं इधर कि कत्लो गारत गरी फितना फसाद ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। और ये भी सिखा दिए इन आयतों में कि इस्लाम के जो मुखालिफ हैं वो हमेशा एनिमिटी, बुग़्ज़, अनाद रखते हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मौके ढूंढते हैं कि कहीं इनका नाम आए और हम पकड़ दें। और इसके मुकाबले में आज हम मुसलमानों को जो जिहाद करना है वो कलम और जुबान के जरिए, माल के जरिए, और अगर जरूरत पड़े तो फिर तलवार भी उठेगी। इस रस्तों में जब तक अल्लाह के नाम को दुनिया में बुलंद नहीं किया जाएगा तब तक इस्लाम पे अमल करना ही मुमकिन नहीं है। आज पूरी दुनिया में ये हालात बनाए जा रहे हैं और लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही फील नहीं करते। और अल्लाह ताला यही सारी बातें करके अब आगे ऐसे ही मुजाहिदों की बातें करते हैं।
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون